लेजिस्लेटिव ब्रीफ कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक बिल 2008। सामीन, इससे पहले कि हम लेजिस्लेटिव ब्रीफ के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें, आइए बिल की मौजूदा हैसियत पर एक नजर डालें। सामीन, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक 2008 का मुजवजा बिल उस वक्त के इंसानी हकूक के वफाकी वजीर सैयद मुमताज आलम गिलानी ने 17 दिसंबर 2008 को कौमी असेंबली में पेश किया। उसी रोज इस बिल को जायजे के लिए कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक को भिजवा दिया गया, जिसके चेयरमैन रियाज फतेहाना हैं। कमेटी ने 2 साल से जायद अरसे के बाद 4 जनवरी 2011 को अपनी रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश की। और अब लेजिस्लेटिव ब्रीफ के बारे में कुछ मालूमात। समय, ये ब्रीफ पिलडेट की लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसको लाहौर हाई कोर्ट की एडवोकेट आयशा हामिद ने तहरीर किया है। इसका मकसद अराकीन पार्लियामेंट को इस कानून साजी के अगराज व मकासद और मसाइल से आगाही फराहम करना है, ताकि वो इस मौजू पर वाज़े मौकफ ले सकें। इस ब्रीफ का मकसद शहरियों और मीडिया की आगाही बेहतर बनाना भी है। ये पिलडेट के प्रोजेक्ट इंतखाबी और पार्लिमानी अमल और पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के तहत पेश किया जा रहा है, जिसमें यूएन डेमोक्रेसी फंड ने तआवुन फराहम किया है। यहां ये बात वाज़े रहे कि इस लेजिस्लेटिव ब्रीफ में अगर कोई गलती हुई तो वो दानिस्तान नहीं होगी। इस ब्रीफ में पेश किए गए मवाद से अक्वामे मुत्तहिदा, यूएन डेमोक्रेसी फंड और इसके एडवाइजरी बोर्ड का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। आइए अब इस बिल के अहम नुकात पर नजर डालें। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक बिल 2008 के अहम नुकात ये हैं। नंबर 1, बिल का मकसद एक कमीशन का कायम है जो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक कहलाएगा, जिसके सरबराह कोई साबिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे और कमीशन के मेंबरान में 4 अकलियती रुकन हर सूबे से 1, 4 खवातीन रुकन हर सूबे से 1, 1 रुकन वफाकी दारुल हुकूमत से और सेक्रेटरी इंसानी हकूक कमीशन शामिल होंगे। नंबर 2, कमीशन को चाहे सुमोटो के जरिए या किसी शिकायत पर इंसानी हकूक की किसी भी खिलाफ वर्जी की छानबीन का इख्तियार, जेलों के दौरे और वहां रहने वालों की हालत का जायजा लेने, मकामी कवानीन का जायजा लेकर उन्हें आईन में दर्ज इंसानी हकूक के मुताबिक तब्दील करने की तजावीज देने, इंसानी हकूक से मुतल्लिक पाकिस्तान की जानिब से तौसीक करदा बैनुल अक्वामी मुआहदों का जायजा लेकर उन पर अमल दरामद के लिए इकदामात और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों में इंसानी हकूक की आगाही फराहम करना होगी। नंबर 3, सरकारी रिकॉर्ड की छानबीन और गवाहों की जिराह और दस्तावेजात के जायजे के लिए कमीशन की तश्कील के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोर्ट के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। नंबर 4, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की शिकायत पर कमीशन को हुकूमत से मालूमात या उसके किसी जेली इदारे को तलब करने का इख्तियार होगा। नंबर 5, इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद कमीशन को इख्तियार होगा कि वो हुकूमत या अथॉरिटी को मुतलका शख्स या अशखास के खिलाफ अदालत में चालान पेश करने का कहे, हुकूमत या अथॉरिटी को मुतासर शख्स या उसके खानदान को फौरी रिलीफ देने के लिए तजावीज दे, हुकूमत या अथॉरिटी कमीशन की हिदायत की रोशनी में मुजवजा एक्शन और कमीशन के तबसरे के साथ इंक्वायरी रिपोर्ट शाया करे। नंबर 6, कमीशन वफाकी हुकूमत को सालाना रिपोर्ट जमा कराएगा और किसी अहम नौयत के मामले पर खुसूसी रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। नंबर 7, बिल के जरिए इंसानी हकूक की खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी, जिनमें केस की पैरवी के लिए खुसूसी सरकारी प्रोसिक्यूटर भी तैनात किए जाएंगे। आइए सामीन, अब इस बिल के खुलासे पर एक नजर डालें। सामीन, बिल की शिक 3 के हिस्सा 2 में कमीशन के कदुकाल बयान किए गए हैं। इसके सरबराह कोई साबिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे और कमीशन के मेंबरान में 4 अकलियती रुकन हर सूबे से 1, 4 खवातीन रुकन हर सूबे से 1, एक रुकन वफाकी दारुल हुकूमत से और सेक्रेटरी इंसानी हकूक कमीशन शामिल होंगे। कमीशन ज्यादातर अदालती तर्ज पर काम करेगा और कमीशन को काम के दौरान और इंक्वायरी के लिए बिल का बाब 5 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत मुकदमे की समाअत में सिविल कोर्ट के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। सामिन, यहां ये बात वाज़े रहे कि कमीशन के इख्तियारात और काम के हवाले से शिक 11 के मुताबिक कमीशन सुमोटो या किसी मुतासरा की शिकायत पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करेगा। कमीशन को जेलों का दौरा करने का भी इख्तियार होगा। शिक 11 की सब शिक सी के मुताबिक जेल का दौरा सूबाई हुकूमत को आगाह करके किया जाएगा। कमीशन को शिक 11 डी के मुताबिक इख्तियार है कि कवानीन का जायजा ले सके। इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन भी शामिल हैं और वो इन कवानीन को बेहतर बनाने के लिए तजावीज पेश कर सकता है। कमीशन को शिक 11 के में इख्तियार दिया गया है कि वो रिपोर्ट्स मुरतब करे जो हुकूमत पाकिस्तान को अक्वामे मुत्तहिदा के इदारों और कमेटियों में मुआहिदों के मुताबिक पेश करनी है। इसी तरह शिक 11 एम में कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि वो पाकिस्तान के हक में या खिलाफ किसी मामले या शिकायत का हुकूमती, गैर हुकूमती इदारों या फोरम्स पर पाकिस्तान के अंदर या दफ्तर खारजा की मदद से बैरून मुल्क दिफा या पैरवी कर सकता है। मुजवजा बिल का बाब 5 कमीशन की इंक्वायरी के तरीकाकार और इख्तियारात की वजाहत करता है। सामईन, बुनियादी तौर पर कमीशन को किसी शिकायत पर मुकदमे की समाअत के दौरान कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोर्ट्स को मुयस्सर तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। मुजवजा बिल की शिक 17 इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमीशन के इकदामात पर रोशनी डालता है। इस शिक में इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमीशन की अहम जिम्मेदारी हुकूमत, अथॉरिटी, मुतलका अदलिया या मीडिया को मुल्क में इंसानी हकूक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मजीद मौसर इकदामात तजवीज करना है। मौजूदा बिल मुजवजा बिल की शिक 21 और 22 के मुताबिक इंसानी हकूक की अलग अदालतें कायम की जाएं और केसेस की पैरवी के लिए खसूसी सरकारी प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए जाएं। समय यहां ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे बिल की जरूरत क्यों महसूस की गई। पाकिस्तान 24 दिसंबर 1993 को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पास होने वाली करारदाद 48/134 का पाबंद है, जिसके तहत मेंबर ममालिक को कौमी इंसानी हकूक के इदारे NHRIS कायम करना लाजिम करार दिया गया। 1993 में कौमी इदारों की तरक्की और इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बैनुल अक्वामी राबता कमेटी ICC कायम की गई ताकि NHRIS में तावुन और राबतों को बढ़ाया जा सके। ICC को 2008 में स्विस कवानीन के तहत कायम किया गया और इसके ब्यूरो में 16 वोट देने वाले मेंबरान मुमालिक शामिल किए, जिसमें 4 खितों से अराकीन लिए गए। एक्रीडिएशन के लिए जैली कमेटी SCA भी कायम की गई, जो पेरिस असूलों के मुताबिक एक्रीडिएशन के लिए दरख्वास्त देने वाले इदारों का जायजा लेती है। 1991 में अक्वामे मुत्तहिदा के तहत पेरिस में एक वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें कौमी और इलाकाई इंसानी हकूक की तंजीमों ने शिरकत की। इसमें कुछ सिफारिशात मुरतब की गई, जिन्हें पेरिस उसूल, पेरिस प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया। इन्हीं सिफारिशात को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के करारदाद 48/134 में शामिल किया गया। पेरिस उसूलों के मुताबिक NHRIS की आजादी, खुद मुख्तारी और गैर जानबदारी को यकीनी बनाया जाएगा और इनकी आजादाना फंडिंग होगी। NHRIS के मेंबरान की तैनाती शफाफ और गैर जानबदाराना तरीके से की जाना जरूरी है और इनको जिस हद तक मुमकिन हो वसी मैंडेट दिया जाए। इस वक्त ICC ने 67 NHRIS को दर्जा अव्वल की एक्रीडिएशन दी हुई है। यह जरूरी है कि पाकिस्तान के कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक को पेरिस उसूलों के मुताबिक बनाया जाए और मुजवजा बिल के जायजे में भी इस बात को मद्देनजर रखा जाए। अराकीने पार्लियामेंट कोई भी तरमीम तजवीज करें तो वो ऐसी हो जिससे ये बिल पेरिस असूलों से मजीद हम आहंग हो, ताकि पाकिस्तान के कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक को दर्जा अव्वल की एक्रेडिएशन मिल सके। आइए सामईन अब एक नजर डालें कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तरक्की की मौजूदा सूरत हाल क्या है। सामईन, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के कयाम का पहला ऐलान 1993 में किया गया। निगरान हुकूमत के दौर में इंसानी हकूक सेल कायम करने की जरूरत महसूस की गई। दिसंबर 1993 में यह सेल कायम किया गया, जिसे उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1995 में खुद मुख्तार वजारत का दर्जा दे दिया। ताहम मुल्क में माली मुश्किलात के पेश नजर इसको इंसानी हकूक विंग में तब्दील करके वजारत कानून व इंसाफ के साथ मुंसलिक कर दिया गया, जो वजारत कानून व इंसाफ व इंसानी हकूक बन गई। इस विंग को नवंबर 2007 में एक बार फिर तरक्की देकर डिवीजन बना दिया गया और नवंबर 2008 में वजारत का दर्जा दे दिया गया। 1987 से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP एक आजादाना, गैर सियासी और गैर मुनाफा बख्श NGO सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड पाकिस्तान में इंसानी हकूक के आलमी डिक्लेरेशन, जो कि 10 दिसंबर 1948 को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का मंजूर शुदा है, पर अमल दरामद के लिए काम कर रही है। ताहम हकूमत पाकिस्तान इंसानी हकूक की बेहतरी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है, इसलिए ये महसूस किया गया कि ये अहम काम प्राइवेट सेक्टर या NGO पर नहीं छोड़ा जा सकता, और अब ये मुजवजा बिल कौमी असेंबली के सामने है। सामईन, बिल का तजिया कुछ इस तरह किया जाता है। बिल बुनियादी तौर पर कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक का कयाम चाहता है, ताकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। बिल की अहम शिकें और इनका तजिया कुछ इस तरह है। कमीशन का चेयरपर्सन। शिक 3 के हिस्सा 2 के मुताबिक कमीशन का चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का साबिक जज होगा। मेंबरान में 4 अकलियती रुकन हर सूबे से एक, 4 खवातीन रुकन हर सूबे से एक, 1 रुकन वफाकी दारुल हुकूमत से और सेक्रेटरी इंसानी हकूक कमीशन शामिल होंगे। 4 जनवरी 2011 को कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज किया कि कमीशन का चेयरपर्सन कोई भी और अहम शख्स जो अपनी ईमानदारी, काबिलियत और तजर्बाकारी के लिए मशहूर हो बनाया जा सकता है। कमीशन की साख्त। सामिन, कमीशन ज्यादातर अदालती तर्ज पर काम करेगा और इसे काम के दौरान और इंक्वायरी के लिए बिल का बाब 5 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 के तहत मुकदमे की समाअत में सिविल कोर्ट के तमाम इख्तियारात दिए गए हैं। इन हालात में मुजवजा बिल की शिक 3 के हिस्सा 2 का सब हिस्सा 1 के अल्फाज को मद्देनजर रखना जरूरी है, क्योंकि कमीशन के कामों को बाकायदगी से अदा करने के लिए ये लाजमी है कि रहनुमाई फराहम करने वाले शख्स को कानून के शोबे में अच्छी दस्तरस हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज। कमीशन के किसी और मेंबर का कानून के शोबे से ताल्लुक जरूरी नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का तजुर्बा और भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। सामिन, यहां यह भी तजवीज काबिले गौर है कि फाटा और गिलगित बल्तिस्तान से ऐसी ही शख्सियात को शामिल किया जाए। अकलियती अराकीन की तादाद 4 से कम करके 2 की जा सकती है। इसी तरह खवातीन मेंबरान की तादाद भी कम करके 2 हो सकती है, और यह नामजद अथॉरिटी की सवाबदीद पर छोड़ा जा सकता है कि वो बाकी मेंबरान की शफाफ और नुमाइंदा नामजदगी को यकीनी बनाए। मौजूदा शिक 4 के मुताबिक चेयरपर्सन और दीगर मेंबरान की तैनाती सदर वजीर आजम के मशवरे से करेंगे। इस शिक में इस तरह तरमीम की जा सकती है, सदर वजीर आजम की सिफारिश पर मेंबरान तैनात कर सकते हैं, जो वजीर आजम कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में करेंगे। इस कमेटी में वजीर आजम चेयरमैन और मेंबरान में स्पीकर कौमी असेंबली, कौमी असेंबली में कायदे हिजब इख्तलाफ, सेनेट में कायदे ऐवानो कायदे हिजब इख्तलाफ और विफाकी वजीर इंसानी हकूक शामिल होंगे। कमीशन का काम। سامعین، کمیشن کے اختیارات اور کام کے حوالے سے شق 11 کے مطابق کمیشن سوموٹو یا کسی متاثرہ کی شکایت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر کاروائی کرے گا۔ کمیشن کو جیلوں کا دورہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ شق 11 کی سب شق سی کے مطابق جیل کا دورہ صوبائی حکومت کو آگاہ کر کے کیا جائے گا۔ یہ کمیشن کے اختیارات پر غیر ضروری پابندی ہے اور بہتر ہے کہ آخری فقرہ حذف کر دیا جائے۔ کمیشن کو شق 11D کے مطابق اختیار ہے کہ قوانین کا جائزہ لے سکے، اس میں دہشت گردی کے خلاف قوانین بھی شامل ہیں، اور وہ ان قوانین کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کر سکتا ہے۔ یہ اختیار ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ زائد ہے۔ یہی بات شق 11 کی ای میں درج ہے جہاں اس کو مؤثر طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، کمیشن کو شق 11K میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ رپورٹس مرتب کرے جو حکومت پاکستان کو اقوام متحدہ کے اداروں اور کمیٹیوں میں معاہدوں کے مطابق پیش کرنی ہیں۔ پیرس اصولوں کے مطابق کمیشن کو ہر معاملے میں آزاد اور غیر جانبدار رہنا ہے، اور اس کو حکومت پاکستان سے منسلک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لیے اس ذیلی شق میں ترمیم کر کے یہ درج کیا جائے کہ کمیشن حکومتی رپورٹس میں اپنی آزادانہ رائے دے سکتا ہے۔ اسی طرح شق 11 کی ایم میں کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں یا خلاف کسی معاملے یا شکایت کا حکومتی، غیر حکومتی اداروں یا فورمز پر پاکستان کے اندر یا دفتر خارجہ کی مدد سے بیرون ملک دفاع یا پیروی کر سکتا ہے۔ کمیشن کی آزادی کے تحفظ یا اس کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے معاملے پر اس ذیلی شق میں ترمیم کر کے دفاع کا لفظ نکال دیا جانا چاہیے۔ اور اب انکوائری کا طریقہ کار اور اختیارات۔ سامعین، مجوزہ بل کا باب 5 کمیشن کی انکوائری کے طریقہ کار اور اختیارات کی وضاحت کرتا ہے۔ بنیادی طور پر کمیشن کو کسی شکایت پر مقدمے کی سماعت کے دوران کوڈ آف سول پروسیجرز 1908 کے تحت سول کورٹس کو میسر تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ درحقیقت اس باب میں کمیشن کو دیے جانے والے اختیارات وہی ہیں جو پاکستان کمیشن فار انکوائریز ایکٹ 1956 کے تحت وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ تمام کمیشن کو حاصل رہے ہیں۔ تاہم پاکستان کمیشن فار انکوائریز ایکٹ 1956 کی شق 5 کا حصہ 5 کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ کمیشن مزید مضبوط ہو۔ شق 5 کا حصہ 5 کچھ اس طرح سے ہے: کمیشن کے تحت ہونے والی کوئی بھی کاروائی پاکستان پینل کوڈ کی شقوں 193 اور 228 کے مطابق عدالتی کاروائی تصور ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص اگر کمیشن کو کاروائی کے دوران گمراہ کر رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے یا تذلیل کر رہا ہے، کو جرمانہ، سزا یا دونوں دی جا سکتی ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں انکوائری کے بعد کے اقدامات پر۔ سامعین، مجوزہ بل کی شق 17 انکوائری مکمل ہونے کے بعد کمیشن کے اقدامات پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس شق میں انکوائری مکمل ہونے کے بعد کمیشن کی اہم ذمہ داری حکومت، اتھارٹی، متعلقہ عدلیہ یا میڈیا کو ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات تجویز کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کو اس مجوزہ بل میں ترمیم کے ذریعے کمیشن کی سفارشات کو حکومت یا اتھارٹی پر لازم قرار دینا چاہیے، تا وقت کہ حکومت یا اتھارٹی تحریری طور پر ان سفارشات پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجوہات فراہم کرے۔ انسانی حقوق کی عدالتیں۔ سامعین، مجوزہ بل کی شق 21 اور 22 کے مطابق انسانی حقوق کی الگ عدالتیں قائم کی جائیں اور کیسز کی پیروی کے لیے خصوصی سرکاری پروسیکیوٹرز تعینات کیے جائیں۔ خصوصی عدالتوں کے قیام کی وجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کیسوں کی فوری سماعت کرنا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سزائیں موجود ہیں، تو الگ متوازی عدالتی نظام کے قیام کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ واضح رہے کہ ہمارے نظام میں موجود خامیاں موجود ہیں، لیکن جرم کی سزا کے تعین میں یا آئین میں بنیادی حقوق کو دیے گئے تحفظ میں कोई खामी नहीं है, कमी इनके मुअस्सर अमल दरामद में है। इन हालात में एक मुतवाजी अदालती निजाम कायम करने का कोई फायदा नहीं। इंसाफ की फराहमी और अदालती निजाम में बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। इसलिए 4 जनवरी 2011 को कायमा कमेटी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात के मुताबिक शिक 21 और 22 को खत्म कर देना चाहिए। आइए सामईन अब भारत के इंसानी हकूक कमीशन से एक तकाबली जायजा लें। भारत में 28 सितंबर 1993 को सिदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इंसानी हकूक के तहफ्फुज का कानून बनाया गया, जिसे बाद में भारतीय पार्लियामेंट ने कुछ तरामीम करके मंजूर किया और 12 अक्टूबर 1993 को ये इंसानी हकूक के तहफ्फुज का एक्ट 1993 बन गया। इसी एक्ट के जरिए भारतीय कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तश्कील दिया गया। तकाबली जायजे में अगरचे कौमी असेंबली में पेश किए गए मुजवजा बिल काफी हद तक भारत के इंसानी हकूक के तहफ्फुज का एक्ट 1993 से मुमासिल हैं, लेकिन भारतीय एक्ट के मुताबिक कमीशन के मेंबरान का इंतखाब सूबाई या इलाकाई बुनियादों पर नहीं किया जाता। इसकी तश्कील कुछ यूं है: चेयरपर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, एक मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रहा हो, एक मेंबर जो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रहा हो, 2 मेंबरान जिनको इंसानी हकूक से मुतल्लिका मामलात की मालूमात या तजुर्बा हो। अकलियतों और ख्वातीन के लिए कौमी कमीशन के चेयरपर्सन भी मेंबरान तसव्वुर होंगे। भारतीय एक्ट के मुताबिक सदर कमीशन के मेंबरान को कमेटी की सिफारिशात पर तैनात करेगा। कमेटी इन अराकीन पर मुश्तमिल है: वजीर आजम कमेटी की चेयरपर्सन, स्पीकर लोकसभा, अमूर दाखला के वजीर, अपोजिशन लीडर लोकसभा, अपोजिशन लीडर रियासती कौंसिल, डिप्टी चेयरमैन रियासती कौंसिल। सामिन, भारतीय एक्ट में मजीद कहा गया कि तमाम हाजिर सर्विस जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मुशावरत से तैनात किए जा सकते हैं। आइए सामिन अब अराकीन पार्लियामेंट के लिए कुछ तजावीज सुने। नंबर 1, इस शक का इजाफा किया जा सकता है कि कमीशन अपना काम ईमानदारी, जाफिशानी, मोतदिलाना और आजादाना तरीके से अंजाम देगा। नंबर 2, इस शक का इजाफा किया जा सकता है कि कमीशन किसी ऐसे मामले की छानबीन नहीं करेगा जो अदालत में जेर समात हो। नंबर 3, इस शक का इजाफा किया जा सकता है कि कमीशन किसी ऐसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के वाक़े की छानबीन नहीं करेगा जिसे 1 साल से जायद मुद्दत गुजर चुकी हो। नंबर 4, शक 2 का हिस्सा सी में अल्फाज लिबर्टी और डिग्निटी के दरमियान लफ्ज इक्वालिटी शामिल किया जाए। नंबर 5, शिक 2 का हिस्सा सी में यह वाजे किया जाए कि इंसानी हकूक में आईन में मौजूद हकूक हुकूमत पाकिस्तान की तौसीक करदा बैनुल अक्वामी कन्वेंशन में शामिल हकूक और पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से नाफिस करदा हकूक शामिल हैं। नंबर 6, अगर कोई हाजिर सर्विस जज कमीशन का मेंबर बनाया जाए तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से बनाया जाए। नंबर 7, शिक 3 का हिस्सा 2 का सब हिस्सा 4 में यह शामिल किया जाए कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मेंबर को इंसानी हकूक की मालूमात और तजर्बा होना चाहिए। नंबर 8, कमीशन में फाटा और गिलगित बल्तिस्तान से तजर्बाकार अफराद को भी मेंबर बनाया जाए। नंबर 9, शिक 3 का हिस्सा 2 का सब हिस्सा 2 में अकलियत की मजीद वजाहत की जाए। नंबर 10, मुजवजा ड्राफ्ट बिल में अकलियती अराकीन की तादाद 4 से कम करके 2 की जाए। नंबर 11, इसी तरह खवातीन अराकीन की तादाद भी 4 से कम करके 2 की जाए और ये तैनात करने वाली अथॉरिटी की मर्जी पर छोड़ा जाए कि वो मेंबरान की तैनाती में शफाफियत और नुमाइंदगी को यकीनी बनाए। नंबर 12, मौजूदा शिक 4 में कहा गया है कि सदर कमीशन के चेयरपर्सन और दीगर मेंबरान की तैनाती वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। इस शिक में तरमीम करके इसे यूं लिखा जा सकता है: صدر وزیراعظم کی سفارش پر ممبران تعینات کر سکتے ہیں جو وزیراعظم کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کریں گے۔ اس کمیٹی میں وزیراعظم چیئرمین اور ممبران میں اسپیکر قومی اسمبلی، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، سینٹ میں قائد ایوان و قائد حزب اختلاف اور وفاقی وزیر انسانی حقوق شامل ہوں گے۔ نمبر 13، مجوزہ بل کی شق 5 میں ترمیم کر کے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ کمیشن کے چیئرپرسن یا کسی ممبر کو وزیراعظم کی سفارش پر صدر صرف اس وقت ہٹا سکتا ہے جب اس کے خلاف صدر کی طرف سے سپریم کورٹ میں برے برتاؤ اور نااہلی کی وجہ سے دائر ریفرنس کی قوانین کے مطابق انکوائری کے بعد سپریم کورٹ اس ممبر یا چیئرپرسن کو نااہل قرار دے دے۔ نمبر 14، شق 11 کی ذیلی شق سی کے تحت کمیشن کو جیلوں کے دورے کا اختیار ہے۔ صوبائی حکومتوں کو آگاہ کرنا کمیشن کے اختیارات پر غیر ضروری پابندی کے مترادف ہے۔ صوبائی حکومتوں کو آگاہ کرنا کے فقرے کو حذف کر دینا چاہیے۔ نمبر 15، شق 11 کی ذیلی شق کے حکومت پاکستان کی اقوام متحدہ کے اداروں اور کمیٹیوں کو رپورٹس جمع کرانے سے متعلق ہے۔ اس میں ترمیم کر کے لکھا جانا چاہیے کہ کمیشن حکومتی رپورٹس میں آزادانہ نوٹ درج کر سکتا ہے۔ کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حکومت پاکستان سے منسلک نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 16، اسی طرح شق 11 کی ذیلی شق ایم میں کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں یا خلاف کسی معاملے یا شکایت کا حکومتی، غیر حکومتی اداروں یا فورمز پر پاکستان کے اندر یا دفتر خارجہ کی مدد سے بیرون ملک دفاع یا پیروی کر سکتا ہے۔ کمیشن کی آزادی کے تحفظ یا اس کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے معاملے پر اس ذیلی شق میں ترمیم کر کے دفاع کا لفظ نکال دینا چاہیے۔ نمبر 17، باب 5 میں پاکستان کمیشن فار انکوائریز ایکٹ 1956 کی شق 5 کی ذیلی شق 5 کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ کمیشن مزید مضبوط ہو۔ شق 5 کی ذیلی شق 5 کچھ اس طرح سے ہے، کمیشن کے تحت ہونے والی کوئی بھی کاروائی پاکستان پینل کوڈ کی شقوں 193 اور 228 کے مطابق عدالتی کاروائی تصور ہوگی۔ نمبر 18، شق 17 کے تحت پارلیمنٹ اس مجوزہ بل میں ترمیم کے ذریعے کمیشن کی سفارشات کو حکومت یا اتھارٹی پر لازم قرار دے سکتی ہے تا وقت کہ حکومت یا اتھارٹی تحریری طور پر ان سفارشات پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجوہات فراہم کریں۔ اور آخر میں نمبر 19، سامعین، مجوزہ بل کی شق 29 جس میں وفاقی حکومت پالیسی معاملات میں کمیشن کو ہدایت جاری کر سکتی ہے کو حذف کر دینا چاہیے کیونکہ کمیشن کو ہدایات دینے کا اختیار اس کی آزادی کو متاثر کرے گا اور کمیشن پیرس اصولوں کی تعمیل نہیں ہوگی۔